अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं, बेशक आप फुली वैक्सीनेटेड हैं लेकिन पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको 10 डे का आइसोलेशन करना पड़ेगा।
ठीक है,
पायन फिर तुसी जड़ा ना टी रैवल बहुत मुश्किल कर देता है। असी तो कैसी चीजा हो रही हैं सीधियां,
ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जो
बैकलॉग है ना लोगों को इस तरह डिस्करेज करें हम।
और लोगों को जरा कम एयरपोर्ट आने दें, लोड ज्यादा नहीं करें, और जितने वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं वहां पर, लगेज पड़ा हुआ है वहां पर, उसको खाली करें कि पता नहीं किसका लगेज है। ये बंदा आके कह रहा है वापिस भी चला गया और उसके पास पता लगा उसका लगेज अभी तक मिला ही
पियर्सन पे बैठा हुआ है।
पियर्सन ने
तो ये जो है ना, ये जो वो शैतान बैठा हुआ है ना उधर मक्का और मदीना में, मैं उसके साथ बड़ा नाराज हूँ इस वास्ते कि उसने इस दफा बड़ा जो है वो सेलिब्रेट किया कि वो मेरे टक्कर के लोग इस दफा आए। तो पायन ये देखें, शैतान पायन ये ना करें, ये देखें इधर बड़े बड़े नोटी बैठे हुए हैं।
हाँ जी,
हाँ जी, तो ये देखें जरा क्या ला बना दिया ये आज। अच्छा जी, अच्छा जनाब, जो हेल्थ कैनेडा है वो आज उसने मॉडर्ना की कोविड 19 वैक्सीनेशन जो है वो प्री स्कूलर्स और इन्फेंट्स जो है उनके लिए भी अप्रूव कर दी है। ये बड़े अरसे से मॉडर्ना इनको बोल रहा था कि बच्चों के लिए जो है सिक्स मंथ से फाइव ईयर्स के जो करीब बच्चे हैं उनको 1/4 साइज ऑफ द अप्रूव डोज जो कि एडल्ट को दी जाती है वो दी जाए इनको, तो उसके लिए नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन इम्यूनाइजेशन जो है जो जिसको हम नाची बोलते हैं अपनी को, तो वो इनको कह रही थी कि जी अभी तक अप्रूव नहीं ये लोग कर रहे थे हेल्थ कनाडा वाले और इनको, तो ये इन्होंने कहा जी कि अब हमारे पास, नाची ने कहा है कि जैसे जैसे हमारे पास अब आएंगी इसके ऊपर अपडेट्स भेजेगा जो है हेल्थ कनाडा, वैसे वैसे हम आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो ये इसके ऊपर वो कहते हैं जी लेकिन हमने मॉडर्ना को यह भी कहा है, हमारी नाची ने कहा है कि मॉडर्ना को हमने ये भी कहा है कि आप इसमें सेफ्टी और एफिकेसी जो है उसका डाटा भी अभी हमको भेजो, तो ये जब इनके पास आएगा तो फिर ये वैसे वैसे हमको अपडेट करते रहेंगे। इनकी वेबसाइट्स जो हैं वो देखनी बहुत जरूरी हैं। तो ये है, अच्छा जनाब, ओटावा बेस्ड एक मुस्लिम चैरिटी है और इसका नाम है ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल। इसने एक्सक्यूज मी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा को कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो हियरिंग सुने जब वो जब पेनल्टीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाई जाती हैं तो उनको ये हियरिंग सुनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए है। हुआ क्या है कि इस चैरिटी को इश्यू इसने की थी कुछ टैक्स रिसीट्स, तो इनको उसके बाद मना कर दिया था सीआरए ने कि आप इस तरह की कोई टैक्स रिसीट्स जो हैं वो इशू नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सीआरए ने इनके ऊपर 1 ईयर सस्पेंशन लगाई थी वो कहते हैं जी कि ये इन जुलाई 2021 में और इसने जो ऑडिट किया था हमारी जो चैरिटीज थी और उसके अंदर इन्होंने कहा था कि इन लोगों ने पूरे इनिशिएटिव्स नहीं लिए हुए और उनका पूरा जो प्रोसीजर है उसको पूरा नहीं किया हुआ। अच्छा, ये जो सस्पेंशन है ये तो अब एक्सपायर हो गई है लेकिन इसके बावजूद जो है ये ह्यूमन कंसर्न चैरिटी इंटरनेशनल वाले,
इट इज द ओल्डेस्ट शादी जी, ओल्डेस्ट जो ये जो हमारी
चैरिटीज
चैरिटीज हैं उनमें मुस्लिम की चैरिटीज में ये ओल्डेस्ट चैरिटी है इन कैनेडा।
इन कैनेडा,
और
जी,
ये जो आप बात कर रही है ना रिसीप्ट की, ये 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूज किया था और इसको कहते हैं थर्ड पार्टी रिसीप्टिंग, द वन हुज डूइंग इट बट
कुछ और कोई और रिसीट दे रहा है।
हाँ, तो हाँ, वो थर्ड पार्टी रिसीप्ट, ये रिसीप्ट इन्होंने दी है
हाँ,
मगर वो किसी और के लिए, से फॉर इंस्टेंस कोई शख्स है जो हमारे पास आता है कि यार मुझे इन पैसों की जरूरत है किसी गुड
कॉज के लिए,
तो हम कहते हैं कि भाई आपके पास वो है चैरिटी का नंबर नहीं, तो आप ऐसा करें किसी एक चैरिटी वाले को पकड़ें तो वो जो है वो आके उसके थ्रू हम देंगे ताकि लोगों को आप रिसीट मिल सके। तो वो उन के लिए 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी एंड इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, $307,000 US के इन्होंने रिसीट्स जारी किए थे। तो उसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल इन पे वो है कि
कर्ब है कि आप दे नहीं सकते हैं रिसीट्स,
आप रिसीट इशू नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो है ये इनको नहीं होनी चाहिए इजाजत, तो आपने इनको क्यों दी हुई है। तो बहरहाल उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट को कहा, वह रिव्यू डाली हुई है कि आप रिव्यू करें इसको अपनी वो जो कंप्लेंट डाली हुई है, अब देखेंगे ये क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सिर्फ जो है चैरिटेबल सेक्टर जो ये हमारा छोटा सा है वो नहीं है, सिर्फ जो 6-7 ये जो जिन चैरिटीज की बात करें, पूरा जो ये यानी द होल सेगमेंट द होल फ्रेमवर्क ऑफ चैरिटी जो है सेक्शन, तो वो उस सब को इफेक्ट करेगी ये।
एसीआई का कहना ये है सुप्रीम कोर्ट दैट यहाँ का हमेशा से उसूल रहा है कि आई एम नॉट गिल्टी टिल आई एम प्रूविंग गिल्टी,
या
तो यू हैवन इन प्रूवन मी गिल्टी एंड आपने ये सारे सैंक्शन लगा दिए हैं
सीआरए ने, हाँ सारे वो कर दिए हैं विच इज नॉट राइट. हाँ जी बिल्कुल, तो वो बस उसके लिए है क्योंकि सीआरए ने इनके ये सारे जो थी चीजें सस्पेंशन में डाल दी थी, तो अब वो है. अच्छा जनाब, एमिरेट्स एयरलाइंस जो है वो तो आपको पता ही है कि वो तो बड़ी शक्तिशाली किस्म की एयरलाइन है और वो तो किसी की एकड़ी सुनते नहीं है. हीथ्रो एयरपोर्ट की कलम ने आपको स्टोरी बताई थी क्योंकि जाहिर है नलैकी है इनकी, उन्होंने कहा जी सारी एयरलाइंस को कि अपने सारे समर के स्केड्यूल्स जी आप कैंसिल करें, जो हमने कल खबर सुनाई थी, क्योंकि इतना बेतहाशा लोड बढ़ गया है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हम जो है ये इतनी ज्यादा फ्लाइट्स को प्रोसेस नहीं कर सकते. एमिरेट्स एयरलाइंस ने आज बेइंतहा इसका बुरा मनाया. ओहो हो, एमिरेट्स एयरलाइंस का जरा ये क्लब क्लास देखें आप, वाह जी वाह क्या बात है, एयरलाइन हो तो ऐसी हो है जी, तो वरना ना हो. वो कहते हैं जी ये हीथ्रो एयरपोर्ट ने जो कहा है इसकी अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल ये जो कॉल है इसको हम बिल्कुल रद्द करते हैं. हीथ्रो एयरपोर्ट की मैनेजमेंट जो है इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने अक्यूज किया एमिरेट्स एयरलाइंस ने और उन्होंने कहा जी कि हमने इसमें बेशुमार लोगों को समर के लिए जो लंदन जा रहे थे उनको हमने किया हुआ था, या बहुत सारी ऐसी हमारी फ्लाइट्स थी एमिरेट्स की जो कि लंदन के थ्रू लोग आगे जा रहे थे, तो उन सबको आप कह रहे हो कि जी ये बंद कर दो टिकट बेचना, तो हम टिकट बेचना कैसे बंद करें क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अच्छा बाकी की जो एयरलाइंस है ना माजिद भाई, हजारों ही उन्होंने अपने टिकट्स जो है वो स्लैश कर दिए हैं. एमिरेट्स जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उसने एक तो उसके टिकट्स को इतने सस्ते नहीं होते, बेशुमार एक्सपेंसिव होते हैं, ऊपर से जो इस तरह के हाई सीजन्स होते हैं ना, समर हुआ, विंटर में क्रिसमस का सीजन हुआ, उसमें जो है बेसिकली ये कमाते हैं और यानी इस तरह के जिनके पास तैयारे हैं तो उनको पैसे बहुत सारे चाहिए ना, तो वो तो उन्होंने कहा जी कि ये आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से सारा ये गंद हो रहा है, हीथ्रो एयरपोर्ट को कहा है, और उन्होंने कहा कि उसके लिए एयरलाइंस को आप क्यों पीनलाइज कर रहे हैं.
दैट इज पीनलाइजिंग
एयरलाइंस. हाँ जी, क्योंकि वो उनका बिजनेस
अभी दो साल के पैंडेमिक के बाद वापस आए हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो इस वक्त आपने एक और
स्यापा खड़ा कर दिया है. हाँ हाँ, लोग तो बड़ी खुशी खुशी अब समर ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, हाँ. इतने अरसे के बाद, तो उसके बाद तो दो साल तक बेचारे नहीं सोच सकेंगे जितने बैंक ऑफ कनाडा ने कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकी के मुल्कों में भी करेंगे ये रेट्स आए तो लोगों के लिए ट्रैवल भी मुश्किल हो जाएगा. तो वो कहते हैं जी नहीं, इस समर में भी आपने, वो कहते हैं अभी से आप दुख बनाना शुरू कर दे हैं, हीथ्रो वाले कहते हैं अभी से दुख में चले जाओ.
इसी के रिलेटेड जो है ना, जो कल एक खबर आपने सुनाई थी कि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा है कि जी एवरीथिंग नॉर्मल है,
हाँ, तो स्मूथ हो गया हमने,
और हमने और आपने क्या कहा था
कि झूठ है, ये
झूठ है. हाँ. तो अब अभी आपने विंबलडन का फाइनल देखा होगा संडे को, मेंस फाइनल नोवाक एंड क्यूरेगिस का फाइनल हुआ था, तो उसमें नोवाक ने क्यूरेगिस को हरा दिया था,
वो भी हमने खबर सुनाई.
तो वो जो है ट्रैवल कर रहा था एंड उसका स्टॉप ओवर टोरंटो में था,
बदनसीब आदमी.
तो उन्होंने रात स्पेंड की है उसने और उसकी गर्लफ्रेंड या फियांसे जो है
फर्श पे
तो उसकी अभी वायरल हुई हुई है पूरी जो उसने कहा है, यू नो इट्स सो शेमफुल कि उसने क्या क्या हर बुरी बात टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट.
एंड दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और टोरंटो इज द मोस्ट लिवेबल प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल प्लेसेस इन द वर्ल्ड,
इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट. एनीवे आज जेट एयरवेज उनके भी सारे कंप्यूटर उड़ गए,
कैंसिल है. बड़ा बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है क्योंकि ये बेचारी एयरलाइंस अब तो सर उठा रही हैं. खैर एमिरेट्स एयरलाइंस तो जो है वो तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी मेरे ख्याल में और दो ही तीन उसके साथ की मुकाबले की रह गई हैं जो उनकी सर्विसेज हैं और जो उनका स्टाइल है.
ग्रेट सर्विस,
अमेजिंग अमेजिंग, वो तो बिल्कुल फाइव स्टार होटल लगता है उसमें आप बैठे हुए हैं. वो तो लगता नहीं है कि आप जो है एयर कनाडा में सफर कर रहे हैं. वो देखे ना जरा तस्वीर तो देखे आप,
एयर कनाडा की
है. ये एमिरेट्स एयरलाइंस है माजिद भाई, सू कर देगी एमिरेट्स एयरलाइंस आपको, ऐसी बातें ना करें.
एयर कनाडा फ्लाई, एयर कनाडा फ्लाई पीआईए,
नेवर एवर एवर नेवर एवर. अच्छा जी, अच्छा जी, नहीं नहीं खैर मुझे तो भाई कोई शिकायत नहीं है एयर कनाडा से भी, बरन सर्विस बहुत गंदी है लेकिन कोई शिकायत नहीं है हमें. अच्छा जनाब, रशियन मिसल्स ने आज जो यूक्रेन के एक हिस्से के ऊपर जो है ये विंटिसिया का जो इलाका है, थोड़ी दूर है कीव जो उनका कैपिटल है उससे, वहां पे अलेजली एक अटैक किया जो कि यूक्रेन कहता है कि रशिया ने किया है। उसके अंदर 20 लोगों की डेथ हो गई और 90 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। रशियन सबमरीन जो ब्लैक सी में थी उसने जो कहते हैं जी यूक्रेन कहता है कि कैलिबर क्रूज मिसल्स जो हैं ये फायर किए हैं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डेवस्टेशन आई है। वो कहते हैं जी कि इन्होंने कोई जो है जब ये मारे हैं तो ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, उसके पास जो 50 कार्स खड़ी हुई थी और जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी बड़ी तबाही मचाई है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने कहा जी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया अटैक कि हमने ये अटैक किया है, लेकिन एट द सेम टाइम रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूएस और यूके जो है उसको बहुत ज्यादा आज कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जो इतनी ज्यादा जो वॉर में तेजी आ गई है क्योंकि तुम लोग जो है आर्म्ड आर्म्स दे रहे हो अपने उसको, और ये एक तरह की हाइब्रिड वॉरफेयर है जो कि नेटो ने हमारे अगेंस्ट शुरू की हुई है रशिया के अगेंस्ट। तो वो कह रहे हैं इसको जितना आप भड़काएंगे हम भी फिर उतना ही भड़काते जाएंगे, और वो कह रहे हैं जी अभी हम फुल फ्लैश्ड वॉर में आए नहीं हैं। और ये अगर आप लोगों को सेंटेंसेस जो आज हम बोल रहे हैं वो आपको मजाक लग रहा है तो इसको सीरियसली लेना शुरू करें, जो हम बहुत अरसे से जब से ये वॉर शुरू हुई है हम तब से कह रहे हैं कि रशिया अभी अपनी पूरी ताकत से आया नहीं है वॉर के अंदर। जिस दिन वो पूरी ताकत से आया ये टिड्डी जितना बेचारा मुल्क जो है ये बिल्कुल सफा हस्ती से मिट भी सकता है। तो ये इसको इतना ना भड़काएं, लेकिन बहरहाल वही होता है ना जिस वक्त इराक को बर्बाद कर दिया फिर जी सॉरी बोलते रहे बैठ के, हैं जी टोनी ब्लेयर साहब भी तो बाकी के वो जो एडवाइजर थे बुश साहब के भी कि ये गलती थी ये था, क्या फायदा हुआ, लाखों लोग मरवा दिए, लाखों को अपने बेघर कर दिया, मुल्क उनका बर्बाद कर दिया, इतना प्रॉस्परस कंट्री था। आपको पता है माजिद भाई इराक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडीज जो थे उसको इराक को ब्रेन ऑफ मिडल ईस्ट कहते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडीज थे इराक के अंदर, और इतनी कोई प्रॉस्परस वो कंट्री थी। ठीक है जुल्म था सदाम का बड़ी सख्ती थी, ठीक है किंगडम्स जो हैं उनसे ज्यादा था, लेकिन कंट्री तो पीसफुल चल रहा था ना, उसमें कोई तकलीफ तो लोगों को नहीं थी, आम लोगों को तो नहीं थी कोई तकलीफ। तो बहरहाल ये फिर अब इस मुल्क को भी बर्बाद करके एक छोटा सा सॉरी बोल देंगे, ये जो दो लफ्ज सीख लिए ना गोरे ने सॉरी एंड थैंक यू, ये इससे जो है ना सारी दुनिया पर ये रूल करना चाहते हैं बस। अच्छा जनाब आज की ये जो न्यूज है ये और भी आपको ज्यादा शायद कंसर्न में डालेगी। आज सर्जे गुलियास जो विक्टर ऑर्बन जो प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और उन्होंने आज ये बहुत ही ग्लेयरिंग खबर बताई है, और उन्होंने कहा जी कि हंगरी इज डिक्लेयरिंग इमरजेंसी क्योंकि हमारे पास कोई गैस नहीं रही है। और आज उन्होंने बड़ा हंगरी ने माइंड किया, उन्होंने कहा जी कि ये यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टेंटली जो सैंक्शंस लगाती जा रही है रशिया के ऊपर उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाती जा रही हैं बल्कि ये जो है बहुत ज्यादा गैस की कमी भी होती जा रही है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन जो हैं इनके ये चीफ ऑफ स्टाफ, इन्होंने और भी बात करते हुए थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी वैसे कहा था कि जी ये जो कुछ भी हंगरी के अंदर हो रहा है ये यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो पॉलिसीज अब ये चला रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आज तो उन्होंने सिर्फ हंगरी का नाम नहीं लिया, आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि ईयू के अंदर पूरे के अंदर कॉन्टिनेंट में ऑटम और विंटर में शायद कोई भी गैस नहीं होगी। तो आप सोचें कि यूरोप में कितनी बेतहाशा सर्दी होती है, और अगर ये बात वाकई ठीक है, वो कहते हैं जी कि अब हमको क्या करना पड़ रहा है, हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारी अपनी जो इस वक्त नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है वो है 1.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, उसको हम बढ़ा रहे हैं 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को, और इसके अलावा जो हमने बिल्कुल शट डाउन कर दिए थे कोल एक्सट्रैक्शन के जो प्लांट्स थे और नॉन फंक्शनिंग लिग्नेट फायर्ड पावर प्लांट, ये जो लिग्नेट है ये कोल को बोलते हैं, तो लिग्नेट पावर फायर्ड प्लांट्स जो हैं इनको वापस अब हम रिवाइव कर रहे हैं ताकि कोल से एनर्जी पैदा की जाए। इसके अलावा जो है ये हंगरी के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है लेकिन एक ही है, तो वो कहते हैं कि उसकी भी अब हमको प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने भी विक्टर ऑर्बन जो है उनके ऑफिस ने भी कहा है कि कंट्री जो है काफी विंटर के महीनों में खास तौर पे काफी उसको जो है दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि ये नहीं है पूरी गैस नहीं है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, वॉशिंगटन टाइम्स की आज ये एक रिपोर्ट है और ये वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है, डोंट थिंक दैट आई एम मिक्सिंग थिंग, दिस इज नॉट वॉशिंगटन पोस्ट, दिस इज वॉशिंगटन टाइम्स की, और इससे पहले ये सिमिलर न्यूज जो थी यानी कि इसका कुछ जो है जिक्र किया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, तो आज जब हुआ है तो यह ब्रेकिंग न्यूज जो है वॉशिंगटन टाइम्स ने फिर दी है। इनके मुताबिक रशियन आर्म्स डीलर, अलेजली रशियन आर्म्स डीलर विक्टर बाउट, जिनकी के उम्र 55 इयर्स है, जिसको के लेबल किया गया था किसी जमाने में मर्चेंट ऑफ डेथ, इन्होंने यूरोपियंस ने और अमेरिकन्स ने, और इनके ऊपर बड़ी हॉलीवुड की मूवीज भी इंस्पायर की गई थी, जैसे कि 2005 की निकोलस केज की मूवी थी लॉर्ड ऑफ वॉर। वो कहते हैं जी लूजली ये बाउट जो है एक्स सोवियत एयर फोर्स ऑफिसर और फिर जो आर्म्स डील्स में चला गया था उसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। तो ये वापस मॉस्को में आ सकता है इन रिटर्न फॉर जो ये इनकी जो इनके जो स्टार हैं अमेरिकन WBNA स्टार ब्रिटनी ग्राइनर और एक्स यूएस मरीन पॉल विलहन जो हैं उनके बदले में इनको यूएस जो है वो छोड़ सकती है। अच्छा, इन्होंने जो है तकरीबन 11 साल यूएस प्रिजन में ये काट चुके हैं विक्टर बाउट, और इनके ऊपर ये था और इनके बारे में आज वैसे वो जो हैं शीरा शेडलिन एक्स न्यूयॉर्क सिटी फेडरल जज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो अपनी तकरीबन जो है वो अपनी सजा काफी काट चुका है। इनको जो है इनके बारे में ये भी खबरें आई थी कि बाउट एक वेजिटेरियन है, उनको बड़ा क्लासिक म्यूजिक बड़ा पसंद है, 6 लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो कहते हैं ये बड़े हाई प्रोफाइल बंदा था, तो बहुत ही जबरदस्त ये बिजनेसमैन है। तो वो कहते हैं जी कि अब इसको छोड़ा जा सकता है इसके बदले में ब्रिटनी ग्राइनर के चक्कर में और अपने दूसरे जो यूएस मरीन है उनको लाने के चक्कर में। ये जो हैं इनके ऊपर एलिगेशंस थे कि इन्होंने कुछ आर्म्स डील्स की थी, खासतौर पे इंक्लूडिंग मिसल्स कुछ बेचने की कोशिश की थी, जिसके के बारे में कहा था कि ये मिसल्स अब जो है यूएस के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे कभी भी किसी ऑपरेशन के अंदर अगर वो कोई उनको लगेगा कि जो रशियन एयरलाइंस के अगेंस्ट हैं उनको जो दिए जाएंगे और वो इनके ऑपरेशन खत्म करेंगे। तो यानी इन्होंने जो बेचे थे ये आर्म्स और ये जो चीजें थी लाइबेरिया में चार्ल्स टेलर को दी थी, लिबियन लीडर जो थे मुअम्मर कद्दाफी उनको दी थी, और कुछ जो एंगोला की सिविल वॉर के अंदर लोग इन्वॉल्व थे अलेजली कहते हैं कि उनके बारे में कि उनको इन्होंने ये सारे आर्म्स दिए थे। अब ये बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी था और इसकी आप सोचें कि अलेजली इसने ये जो सारी सेल्स की थी देन एट दैट टाइम इट वॉज टू द ट्यून ऑफ, यानी आप सोचें कि आज से कोई 20-25 साल पहले तकरीबन जो थी $20 million की ये डील थी। अच्छा, अब जब इनको पकड़ा था वहां पे जो पकड़ के लाए थे अमेरिका में 2012 में जब इनको सेंटेंसिंग दी गई थी, तो उस वक्त जब जज ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है, तो इन्होंने जो है विक्टर बाउट ने कहा था कि नहीं ये बिल्कुल झूठ है, ये मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए हैं। तो रशिया के लिए ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके बहुत सारे अगेन अलेजली जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रशियन पॉलिटिशियन जो हैं उसके साथ इसके बड़े क्लोज जो हैं वो ताल्लुकात हैं। तो वो आज रशिया ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे दो बंदे छोड़ें तो हमारा ये बंदा छोड़ो तुम, तो फिर हम जो है वाने देंगे। तो ये आज की जो है काफी हलचल मची हुई है अमरीका में इस खबर के ऊपर। अच्छा जनाब, हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब जो हैं वो मिडल ईस्ट के दौरे पे निकले हुए हैं और इसराइल में, ये आज की बहुत बड़ी खबरें हैं। अगेन इफ यू पीपल कैन रीड बिटवीन द लाइंस, दिस इज समथिंग आप देखेंगे कि ये कैसे सारा ना सिर्फ मिडल ईस्ट का रीजन बल्कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैसे मेरे ख्याल में अपसाइड डाउन होगा अगर इन्होंने ये स्ट्रेटजी चलनी शुरू कर दी। आज जो बातें की हैं बाइडन साहब ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, अच्छा जी ये येर लिपिड के साथ जो आज मिल रहे थे वहां पे वेस्ट जेरूसलम के अंदर 2 डे ये विजिट पे आए हुए हैं। यहां पे हमने आपको बताया ही था कि पहले ये इसराइल आएंगे फिर वेस्ट बैंक जाएंगे, तो वेस्ट जेरूसलम में आज ये थे और वहां पे इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग भी की है इंडिया और यूएई के साथ, और इसके अंदर इन्होंने कहा है बहुत ही क्लियरली आज बाइडन साहब ने कि हमको ईरान जो है उसको डिनाय करना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सके, और अगर इसके लिए मुझे ये जो 2015 की जो डील है जिसके के लिए अब सारा यूरोप मुझे जोर दे रहा है कि नहीं तुम करो ईरान के साथ ये डील करो, अगर उससे भी मुझे बाहर निकलना पड़ा तो मैं निकलूंगा इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने आज 10-year एड पैकेज जो है इसराइल के लिए अनाउंस किया है एट द ट्यून ऑफ $38 billion। जो ये इसराइल को देंगे। ये वैसे बेसिकली तो ये जो था साइन किया गया था 2016 में ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, जब बाइडन साहब जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे। अब इसको एक्सटेंड वो कर रहे हैं। टीवी का एक इंटरव्यू हो रहा था वहां पे चैनल 12 के साथ इसराइल में, उसमें भी बाइडन साहब ने एक दफा फिर से कहा कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं वो हमारी यूएस टेररिज्म लिस्ट पे रहेगी और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अब ये चीजें जो हैं दो बहुत ही अपोजिंग हैं, जबकि यूरोप इनको कह रहा है कि आप बैठो और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में हमारे साथ साइन करो उनके साथ। ईरान ने कहा है कि जब तक तुम सैंक्शंस नहीं हटाओगे उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ ये डील नहीं बनाएंगे। उसमें अगर आपने सैंक्शंस के साथ इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के उनको भी टेररिज्म लिस्ट पे से ना हटाया तो फिर जाहिर है कि ये डील नहीं होगी, और नहीं होएगी तो जाहिर है कि फिर ईरान के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होएगा और उसके पास कैपेबिलिटी है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तो फिर ये जो आप इतनी एड दे रहे हैं इसराइल को, फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा?
यू गोइंग थ्रू अनदर वॉर।
हाँ, ये आप दूसरे, बिल्कुल एग्जैक्टली, यू जस्ट नेल्ड इट। तो आप इस मुल्क को भी अब दूसरी वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। यूक्रेन के अंदर आपने वॉर शुरू कर दी है ऑलरेडी, अब ये दूसरी वॉर आप मिडल ईस्ट में, क्योंकि आपको मिडल ईस्ट इतना प्रॉस्परस अच्छा नहीं लग रहा फिर से। और आपके तो हेनरी कैसेंजर साहब ने तो पहले ही कहा हुआ है कि जी हम मिडल ईस्ट का जो है नक्शा चेंज करना चाहते हैं, कब से कहा हुआ है उन्होंने। तो आप तो उसी स्ट्रेटेजी पे फिर से चल पड़े हैं कि जी ठीक है आप मिडल ईस्ट का आप चेंज करें। तो ये बहुत खतरा इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि आप देखें ना कि अब अगर वही मैं कह रही हूं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, अब अगर ये मिडल ईस्ट में इस तरह की जंग शुरू हुई, पाकिस्तान को डेफिनेटली वो बोलेंगे कि आप हमारा साथ दें, राइट? एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, अब चाइना फिर किसका साथ देगा? चाइना का आपको पता है ना कि पिछले दिनों में ये डील हो रही है, चाइना रशिया ईरान की डील हो रही है। तो रशिया और चाइना ईरान को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान जो है वो फिर किसको ज्वाइन करेगा? चाइना रशिया ईरान को करेगा या यूएसए के साथ खड़ा रहेगा, या इसराइल को पाकिस्तान को ज्वाइन करना पड़ेगा? तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्ट्रस पॉलिसी जो कि बाइडन साहब जो हैं वहां पे आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, डिजास्ट्रस हो सकती हैं। इसके अलावा जनाब आज जो है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, अगर आप व्हाइट हाउस की आज वेबसाइट पे जाएंगे ना माजिद भाई, इफ यू गो टू द व्हाइट हाउस वेबसाइट, वहां पे ये जो इनके बीच में ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है ना, ये यूएई के बीच में, इंडिया इसराइल और यूएस के बीच में, ये देखें आज ये एक वर्चुअल मीटिंग भी इनकी हुई है। वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देखेंगे इसको, तस्वीर को, इनके बीच में हुई है। इसको, इस मीटिंग का नाम है I2U2 ग्रुप, इस मीटिंग का नाम है। इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट आज जॉइंट स्टेटमेंट आई है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी यू नो, ये बहुत ही डिजास्ट्रस है एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर अगर ये सारा कुछ हो जाता है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इनकी I2U2 की, इसके मुताबिक इन चार लीडर्स ने, ये जो यूएई इंडिया इसराइल और यूएस के जो लीडर्स हैं, उन्होंने पहले तो मीठी मीठी बातें की कि हां जी हम स्पेस में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड इनसिक्योरिटी पे, लो कार्बन डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एक्सेस टू वैक्सीन पे, इस पे काम करेंगे। एंड देन दिस I2U2 ग्रुप स्टेटमेंट सेज दैट वी आर गोइंग टू रीअफर्म सपोर्ट फॉर अब्राहम्स अकॉर्ड्स, We will deal with Israel in peaceful manner, और जो इसका दुश्मन होएगा वो हमारा दुश्मन होएगा, और हम एडवांस करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और हम ये रीजन के लोगों को कहेंगे जो साउथ ईस्ट एशिया में है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ चलें, और हम ये जो नई ग्रुपिंग्स हो रही हैं इलाके में जैसे कि नेगब फोरम वगैरह है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। इसका अगेन क्या मतलब है? इसका अगेन ये मतलब है कि चूंकि सऊदी अरेबिया भी जो है इसराइल को अब रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाइडन साहब अब ये कहानी जाके अब सऊदी, क्योंकि वो उधर सऊदी में अब गुजारेंगे एक डेढ़ दिन, ठीक है जी, उनको बोलेंगे जी यूएई, जॉर्डन, ये सब जो है कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड्स और आपको दोस्ती इसराइल के साथ बनाई है, तो सऊदी को भी बनानी पड़ेगी। सऊदी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब वो ओपन अप हो रहा है सारा, अपने आप को बता रहा है कि हम बड़े जो हैं अब लिबरल हैं, वो शायद ज्वाइन करेगा अब्राहम्स अकॉर्ड, और अमरीका सऊदी के थ्रू पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है कि तुम भी इसराइल को रिकग्नाइज करो। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। ये आज 14 जुलाई का दिन है जी, आप मेरी बात लिख के रख लें कि ये कितनी डिजास्ट्रस पॉलिसी चेंज लाने वाले हैं बाइडन साहब इस रीजन के अंदर।
मगर एक तरफ से आप ये भी देखें ना कि तो ट्रंप साहब ने शुरू किया था है ना, तो वो अगर आप उस इलाके में पीस चाह रहे हैं तो अगर वो लोग ये इनकी नीयतें सही हैं, साफ हैं इनकी, और वो चाह रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर पीस लाया जाए, क्योंकि उन तमाम का दुश्मन एक इसराइल है, तो इसराइल से अगर सारे लोग दोस्ती कर लेंगे जितने भी पड़ोस 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 वाले हैं तो वहां तो फिर कम से कम पीस तो रहेगा ना फिर।
चलो
फिर
पीस
तो,
रहेगा, वेरी गुड पीस रहेगा, लेकिन एक्सटेंडिंग अब्राहम्स अकॉर्ड में वो फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि आप भी रिकग्नाइज करें, ना किया तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। ठीक है जी। और आज की एक रिपोर्ट जो है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड अगेन, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको खुद ही समझ आएगी कि वो पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको। अच्छा जी। अच्छा जनाब, एक और बड़ी एक्सप्लोसिव जो स्टोरी है आज की, वो वाशिंगटन पोस्ट की है, और वाशिंगटन पोस्ट ने आज, आपको पता ही है कि ये जो थे स्टीव बैनन, जो बड़े राइट हैंड मैन थे ट्रंप साहब के, उनके ऊपर एक दफा से फिर से आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा स्टीव बैनन अमरीका की हिस्ट्री का वो आदमी था जो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मानता नहीं था, डिमोनाइज करता था प्रेस को, इमिग्रेशन को हेट करता था, झूठ फैलाता था, इंसरक्शन जो थी इसने स्टोक की थी, लॉज को फ्लाउट करता था, और इसने डिफ्रॉड किया था बहुत सारे डोनर्स को प्राइवेट ग्रुप्स में, ये कह के कि ट्रंप की वॉल के लिए पैसे चाहिए, और इसने जो है फिर इन तमाम चीजों के लिए प्रेसिडेंशियल पार्डन ले ली थी, जब कोर्ट्स ने कहा कि नहीं इसको चार्ज करके इसके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे, तो इसने वो ले ली, प्रेसिडेंशियल पार्डन ले ली। इसने अपना जो प्रेसिडेंशियल एड के तौर पर जो इसका काम था, इसने उसका फायदा लेते हुए लोगों को डिसीव किया, और इसकी पिक्चर आई थी एक दफा टाइम मैगजीन के कवर पे, और उस कवर पे लिखा हुआ था ग्रेट मैनिपुलेटर, टाइम मैगजीन के कवर पे ग्रेट मैनिपुलेटर लिखा हुआ था। तो ये ट्रंप साहब का, वो कहते हैं जी कि ये ट्रंप साहब का रेस्पुटीन था, वो पता है ना आपको रेस्पुटीन की, रशिया की वो सारी हिस्ट्री, तो वो ये कहते हैं जी कि अब क्या हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ है, वो कहते हैं ये होता है ऊपर वाले का आपके खिलाफ जो है, जब ऊपर वाला आपके खिलाफ हो जाए। ट्रंप साहब ने अपना एक अपॉइंट किया था डिस्ट्रिक्ट जज कॉल जे निकलस वॉशिंगटन के अंदर, उसने अब इसके ऊपर सारे केसेस खोल दिए ये फ्रॉड के, और ये ट्रंप साहब का वो जज है अपॉइंटेड, वो कहते हैं जी कि इसके अगेंस्ट, ये बैनन साहब जो हैं, इसके अगेंस्ट जो है आप एक क्रैकडाउन शुरू करें। वो कहते हैं जी कि आपने ये जो और ये जो अब कर रहे हैं बैनन, हरकतें जो कर रहे हैं कि जी जनवरी 6, 2021 में ये जो कैपिटल हिल पे हुआ उसके लिए मैं वादा माफ गवाह बन जाता हूं और मैं आपको सारा सच बता दूंगा, कहते हैं ये सारी चीजें अब इसको नहीं बचा सकती हैं, क्योंकि इसके खिलाफ जो है, हालांकि इसके जो लॉयर्स हैं वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी इसका कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा जी वो ट्रंप साहब के साथ 24 घंटे बैठा होता था तो लेना देना कैसे नहीं है इसका। तो वो जज कह रहा है जी कि अब इसको छोड़ा नहीं जाएगा। बैनन के जो अटॉर्नी हैं इनके डेविड शॉन, उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि आज बड़ा बुरा मनाया जब इनको कहा गया है कोर्ट में कि इनके खिलाफ सारे जो हैं ये खोले जाएं, तो उसने आज बड़ा जी अग्रेसिवली, और वो जाहिर है ही मस्ट बी वन ऑफ द टॉप लॉयर्स इन यूएस, उसने कहा जी कि अगर आपने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो फिर इस ट्रायल का क्या मकसद है। उन्होंने कहा तुम्हारी बात जब हमने सुननी होगी हम उस वक्त सुनेंगे, और हम ये ट्रायल इसके अगेंस्ट खोल रहे हैं और हम पता चलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इसके खिलाफ ये सारी चीजें जो ये आई हैं कि ये डिसीव करता रहा है, फ्रॉड करता रहा है, ये जो है झूठ बोलता रहा है, और ये सारा कुछ ये चलाता रहा है, ये सारा कारोबार जो है ट्रंप साहब के लिए, तो इसको जो है जेल सेंटेंस भी हो सकती है। अ पर्सन हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट यू नो पावरफुल मैन, उसके ऊपर जो है, यानी कि सेकंड टू द मोस्ट पावरफुल मैन, उसको, तो वो कहते हैं जी कि ये कहता है, ये इसके कुछ वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए थे वहां पर जो आज वहां पे पड़े गए हैं, जो दूसरे जज ने उसे, यानी कि जो इसके खिलाफ है जो लॉयर जिसने बात की कि ये डिस्ट्रैक्ट, डिसीव और ओवरवेलम करता था, तो उसमें इसने कहा कि इसने एक दफा बैनन साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसके जब रिपोर्टर आके पूछते थे इससे बात, तो वो कहता था मीडिया शुड बी एम्बैरस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड एंड शट अप, ये इनके वर्ड्स होते थे। जस्ट लिसन टू अ मोमेंट, मीडिया वालों को कहता था जस्ट लिसन टू अ मोमेंट, और अपोजिशन पार्टी को भी कहता था जस्ट लिसन टू अस, और उसके बाद ये जो है ये कहते हैं जी कि उसके बाद ये कहते होते थे 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहे थे उसके बीच में, ये इतनी कोई मीडिया और जो अपोजिशन थी उसके खिलाफ जबान इस्तेमाल करते थे और हर गलत काम की तरफ जो है ये चलते थे। तो आज उसने, जज ने जिसको ट्रंप साहब ने अपॉइंट किया, उसने कहा जी कटे खोल दो इसके बारे में सारे, और इसके ऊपर जो है केसेस चलाओ।
इसके पास भी कोई, क्योंकि इसके पास प्रेसिडेंशियल पार्डन है, स्टीव बैनन के साथ प्रेसिडेंशियल पार्डन है, तो वो सारी चीजें जो जिसका जिक्र हमने किया यहाँ पर, जो फ्रॉड वगैरह जो किया, वो तो ओपन था, वो
ओपन था जी, जी,
ये वॉल के लिए पैसे चाहिए और इन्होंने $1 million ऑर्डर दैट यूज्ड इट फॉर हिज ओन पर्सनल, तो वो उसको फिर आई डोंट नो हाउ दे कैन ओपन इट प्रेसिडेंशियल
पार्डन, पर आज उन्होंने कह दिया उसने,
प्रेसिडेंशियल पार्डन का फायदा क्या हुआ?
उसने कहा कि ये केसेस खोलो इसके खिलाफ, तो ये और लोगों को कहा कि जी आप टेस्टिफाई करो।
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान, तो कॉल करें मुझे, मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान। मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का, बच्चों की एजुकेशन का, या आपकी अपनी रिटायरमेंट का, मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत, लोएस्ट रेट्स, क्योंकि मैं डील करता हूँ तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का एट 905-607-5000। मैं हूँ फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। सी यू सून।
विलेज टेस्ट ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ। एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 905-232-3663-647-774-4888। विलेज टेस्ट।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ। 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
जी
जी मज भाई, बाइडन साहब जो हैं ये जो चार दिन के विजिट पे मिडल ईस्ट की तरफ निकले हैं, उससे पहले जस्ट मतलब है फ्यू आवर्स बिफोर दैट इनकी मुलाकात जो थी ये मेक्सिको के जो हैं प्रेसिडेंट उनके साथ हुई, मैनुअल लोपेज ओराब्डोर, और उनके साथ जो मेक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर थे मार्सेलो एब्रार्ड, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने आज एक ट्वीट करके, और ये जो इनके बीच में स्टेटमेंट्स जो कुछ भी बातें हुई हैं वो एक जारी की है, उसमें इन्होंने लिखा है कि यूएसए अब मेक्सिको को आज से लेके यानी कि 2022 से लेके 2024 तक $40 billion जो है के इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने इजाजत दी है यूएस कंपनीज को कि आप जाके करें। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा, पहले ये खबर हम बता दें, ये हुआ क्या था कि इनके बीच में जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो कि टैरिफ्स लगे हुए थे और चीजों थे उसके ऊपर बहुत सारे झगड़े चल रहे थे मेक्सिको और यूएसए के बीच में, खासतौर पर ट्रंप साहब के जमाने में मेक्सिको के साथ ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। अब बाइडन साहब ने उनको कहा है कि नहीं, हम ये इन सब चीजों को, खासतौर पर ये जो एनर्जी सप्लाईज हैं, इकोनॉमिक इंटेग्रेशन हैं, और ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसकी तरफ हम जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट वी आर अलाउइंग अमेरिकन कंपनीज जिनको कि ट्रंप साहब ने मना कर दिया था कि किसी और मुल्क में जाकर इन्वेस्ट नहीं करना, अपने मुल्क में करो, उनको हम इजाजत दे रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ $40 billion यूएस इन्वेस्टमेंट। आज अमेरिका में एक दफा से फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनका बहुत ज्यादा माथा जो है वो ठनक गया है। वो कहते हैं जी $7 billion आपने यूक्रेन को दे दिए हैं, $38 billion ट्रंप सॉरी बाइडन साहब ने अनाउंस कर दिए हैं इसराइल के अंदर, नाउ इनदर $40 billion यू आर गिविंग टू जो है ये मेक्सिको को। तो आपके अपने मुल्क के अंदर जो हालात खराब होते जा रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो टैक्स पेयर्स का मनी है ये कैसे आप बाहर कर रहे हैं जबकि आपके अपने मुल्क में इतनी हाई इन्फ्लेशन है और मुल्क के हालात इतने खराब हैं। तो ये भरल जी बड़ी आज जो है फिर से एक दफा ये शुरू हो गई है। बिल गेट्स साहब जो हैं वो जी अपेरेंटली बड़े परेशान हैं कि ये पेंडेमिक जो है ये आगे 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 चलती जा रही है। तो बिल गेट्स साहब ने आज अनाउंस किया है कि मेरी जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है उसको $20 billion की मैं डोनेशन दे रहा हूं। जाहिर है कि इसके अंदर जो इनके बोर्ड मेंबर है और इनके दोस्त भी हैं बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे, वो भी $3.1 billion का उन्होंने इनको गिफ्ट दिया है, तो वो भी इसमें शामिल है। और वो कहते हैं जी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये अपनी जो एंडाउमेंट्स है इन सबको यूज करेगी एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, ग्लोबल प्रोग्रेस जो है, जो कि रुक गई थी इस डिजीज के बायस, उसको और जेंडर पैरिटी के ऊपर हम स्पेंड करेंगे। इस वक्त जो नेट वर्थ है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, वो 70 बिलियन US डॉलर को स्टैंड करती है। तो वो कहते हैं जी ये सारे पैसे जो हैं हम अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं उन पे करेंगे। और आज बिल गेट्स साहब ने और भी जो वेल्दी और प्रिविलेज लोग हैं दुनिया के, उनको कहा है कि इस चीज के ऊपर जो है आप ज्यादा स्पेंडिंग करें, क्योंकि दुनिया में जो गरीब की हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके अलावा यूएसए में एफडीए जो है उसने जी अब इजाजत दे दी है कि ओवरसीज जो है उससे आप स्मॉल मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो ला सकते हैं। एफडीए के बड़े कंसर्न्स थे कि ये जो दवाइयां बाहर से आएंगी उनकी पता नहीं क्या क्वालिटी होगी। एफडीए के ऑफिशियल्स जो थे फिर ओवरसीज प्लांट जो था उसका इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे, और ये इनको जल्दी इसलिए करना पड़ा क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी, कैलिफोर्निया और अदर पार्ट्स ऑफ यूएस जो है उससे बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि मंकी पॉक्स बेतहाशा फैलता जा रहा है। तो ये अब जो है डेनमार्क में जो फैसिलिटी है उससे 1.1 मिलियन डोजेस जो हैं खरीद रहे हैं अपने मुल्क के लिए मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन।
इसके साथ साथ यही बताते चले कि ओंटेरियो में फर्स्ट खातून को डिटेक्ट किया गया है।
यस,
आउट ऑफ 156 पहली खातून है जिनको मंकी पॉक्स जो है डिटेक्ट किया गया।
यस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्षे, 73 ईयर्स इनकी एज है, इनकी तो बदबख्तियां जो हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही हैं। हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ये मालदीव्स चले गए थे और मालदीव से अब ये चले गए हैं सिंगापुर में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ये अपने एयरफोर्स प्लेन में बैठ के अपनी वाइफ और दो बॉडी गार्ड्स के साथ माले जो हैं वो वहां पे चले गए थे, जो कि कैपिटल है मालदीव्स का, और वहां से अब आगे गए हैं। उसकी वजह यह हुई है कि जिस वक्त ये मालदीव्स में पहुंचे हैं और मालदीव्स के लोगों को, जो कि हालांकि बहुत क्लोज है श्रीलंका के, उनको पता चला कि ये भाग के अपने मुल्क से आ गए हैं, तो वहां पे जी मोर्चे निकलने शुरू हो गए हैं। बेताजा वहां पे छोटा सा वो मुल्क है उसमें प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उसमें उन्होंने लोग जो है बैनर लेके खड़े हुए थे, डियर मालदीवियन फ्रेंड्स वी अर्ज योर गवर्नमेंट नॉट टू सेफ गार्ड क्रिमिनल्स। वो जाहिर है कि श्रीलंकन थे कुछ लोग उसके अंदर, बाकी के भी मालदीव्स के लोग भी थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है इनको आप वो शरण ना दें आप। तो इसमें जो राइट पुलिस थी उसने इन लोगों के फिर बैनर्स खींचे और इनको डिस्पर्स किया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, वहां पे और लोग आ गए और उन्होंने कहा दिस इज एन एक्सट्रीमली शेमफुल थिंग दैट यू आर प्रोटेक्टिंग क्रिमिनल्स इन योर कंट्री एंड यू आर फैसिलिटेटिंग देम एंड हाउ कैन यू डू दिस। अब ये जो कुछ मालदीव्स में हुआ है उससे ये मालदीव्स में खतरा हो गया है कि 1000 मालदीवियंस जो हैं वो श्रीलंका में रह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन प्रोटेस्ट की वजह से उनको जो है श्रीलंका में नुकसान पहुंचाया जाए। बहरहाल जी ये अब वहां से भाग के जो है चले गए हैं सिंगापुर, और वहां पे जी ये अब इन्होंने वो ली है। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, सिंगापुर में पहुंच के इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। और यहीदा यप्पा अबे वर्धने जो कि वहां पे स्पीकर हैं श्रीलंकन पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि यस हमें इनका जो है वो मिल गया है, रेजिग्नेशन मिल गया है, और हम इसको अब कल चेक करके और देख लेंगे कि क्या ये वाकई इन्होंने साइन किया है और इसकी लीगल वैलिडेशन क्या है, वो सारा कुछ करके और फिर हम इसको आगे बचाएंगे। मोहम्मद नशीद जो है स्पीकर ऑफ मालदीव्स के जो पार्लियामेंट के हैं, उन्होंने भी भरल ट्वीट कर दिया है कि राजापक्षे साहब जो है अब यहां से चले गए हैं, वो चले गए हैं सिंगापुर और वहां से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा है। तो ये अब चीजें गर्म हो गई हैं। ओके जनाब, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है जी 2022, जिसको कि आपको पता ही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल लेकर आता है, और इसमें इन्होंने इंडिया का नंबर जो है वो 146 कंट्रीज में से 135th उस पे नंबर पे डाला है। लेकिन वो कहते हैं जी कि इसने इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि इंडिया पहले 2021 में यानी कि लास्ट ईयर 140th नंबर पे था 156 कंट्रीज में। और ये जो चार एरियाज जिसके लिए सारी कंट्रीज जो थी थर्ड वर्ल्ड की उनको देखा था या बाकी की दुनिया की भी कंट्रीज को, वो फोर एरियाज थे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ and survivor and political empowerment। तो उसके अंदर वो कहते हैं जी इंडिया में जो 662 million women हैं ओवरऑल 2022 में, उनकी कंडीशन जो है वो इंप्रूव की है। women empowerment में ये बहुत ज्यादा ऊपर हैं, क्योंकि बेशुमार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और दूसरी जगहों की हेड्स जो हैं अब औरतें हैं, तो 146 कंट्रीज में से 48th नंबर है। तो इंडिया इज रियली सेलिब्रेटिंग दिस, कूडोस टू देम। और जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी है उसमें ये 143rd नंबर पे हैं इन 146 कंट्रीज, एजुकेशन में 104 पे हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बिल्कुल आखिरी नंबर पे हैं ये इन 146 कंट्रीज, यानी कि ये 146th ही कंट्री है इन हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है जिसमें के जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कासिम सूरी साहब ने जो जब नॉन कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी तो उसको जो है वो रद्द कर दिया था, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं था। उन्होंने जो है बजाय इसके के अंडर आर्टिकल 69(1) ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते, इन्होंने नहीं किया और उसका आउटकम जो है वो वोट का नहीं आने दिया, ये नेशनल असेंबली के अंदर और अपना यूनिलैटरल डिसीजन लेके इस सारी चीज को रद्द किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये जो सूरी साहब का जो ये एक्शन था इसकी वजह से और बहुत सारी चीजें एक इन्होंने ट्रिगर की, चेन ऑफ इवेंट्स वो शुरू हो गई और जो है इन्होंने फिर अलाउ किया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि वो कुछ करें जो कि उनके द्वारा इख्तियार में नहीं था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब जबकि ये सारा इनका वर्डिक्ट आया है तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने इसको बड़ा हेल किया है। उन्होंने कहा जी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा जी कि ये सारे जो इमरान खान साहब के लाइज और प्रोपागेंडा था वो एक्सपोज हो गया है। उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इमरान खान का जो एक्ट था ये अटरली शेमफुल था एंड इट अंडरमाइंड कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा जो था लाइज थे और जो कोई भी है बंदा जो जिस हर किसी को जो कि ये जानना चाहता है कि क्या हुआ उसको मैं कहता हूं कि ये वर्डिक्ट और ये जजमेंट आप जरूर पढ़ें। तो पायन जो पुरानी आपके ऊपर आई हुई है वो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहरहाल जी, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा। वो सारों को कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कि आप लोग ये पढ़ें। फेडरल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो हैं आजम नजीर तारर साहब उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है वर्डिक्ट को। जाहिर है आप क्या सोच सकते हैं, गवर्नमेंट के बंदे हैं तो उन्होंने करना ही था। और उन्होंने कहा जी कि इसने फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें आज कही हैं वो सही कही हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो कोर्ट है इस्लामाबाद की उसने अपहोल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, सो विच इज वेरी गुड। अब और इससे रिलेटेड जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं, आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर आने वाले हैं 20 सीटों के ऊपर इलेक्शंस। यहां पे ये पता चला है कि पंजाब के अंदर ये जो बहुत ही पावरफुल चौधरीज का ग्रुप है फ्रॉम गुजरात वो अब जो है चौधरी परवेज इलाही वगैरह वो और मुनस इलाही वो इमरान खान का जो है वो साथ दे सकते हैं। वो कहते हैं जी कि हम चूंकि मिलिट्री के भी बड़े करीब हैं और बाकी पावर्स के भी, जाहिर है बाकी पावर्स के यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ही है, तो वो कहते हैं कि जी उन तमाम के बीच में और इमरान खान के बीच में हम जो गैप है उसको खत्म कराएंगे और जुलाई 17 में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वो कहते हैं जी कि इट इज वेरी वेरी वाइटल कि हम पंजाब के अंदर सीटें जो हैं वो जीतें और ये इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि इनका जो है वो इंटरेस्ट है पीएमएलक्यू का, क्योंकि जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर की सीट है उसके ऊपर इनकी नजरें हैं और हमजा शहबाज को वो हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी आज हम पीएमएलक्यू ने कहा है कि हम इमरान खान का साथ देंगे पंजाब के इलेक्शंस में। पाकिस्तान जो है जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये जो अभी हमने बताई है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है इंडिया के ऊपर, उसमें पाकिस्तान जो है जो कि मुझे बड़ी हैरत हुई है कि सेकेंड वर्स्ट कंट्री है ऑन द लिस्ट ऑफ 146 कंट्रीज। यानी कि वाह जी वाह क्या बात है आपकी। वो कहते हैं जी इसलिए कि पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में वैसे तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है लेकिन अभी भी पाकिस्तान को 132 ईयर्स लगेंगे जो जेंडर पैरिटी में पहुंचते। तो इसलिए इसका जो नंबर है 145th है आउट ऑफ 146 कंट्री इन द नेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल। और इसमें जो पाकिस्तान के अंदर औरतें हैं 107 मिलियन है, तो वो कहते हैं जी उनके कुछ हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने जो टॉप पे जिन कंट्रीज को डाला है उनके अंदर जी आयरलैंड जो है वो टॉप पे है कि यहां पे सबसे ज्यादा जी वो है जो है वो पैरिटी। ये देखें जी ये लिस्ट देखें जो हमारा देख रहा है आज, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आई है। वो कहते हैं जी आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, रवांडा। यानी कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि रवांडा जो है उसमें तो निकरागुआ, नमीबिया, आयरलैंड, जर्मनी, तो नमीबिया और निकरागुआ भी जो है वो भी पाकिस्तान से जनाब आगे हैं, 7वें और 8वें नंबर पे हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने औरतों को जो है वो दी हुई है पैरिटी दी हुई है। भाई वाह क्या बात है। रवांडा में तो मारामारी चल रही थी, सेम वॉज द केस। निकरागुआ में पूरी ड्रग ट्रेड चल रही थी, नमीबिया के अंदर तो खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं है, तो पैरिटी की बातें कहां से। बहरहाल जी ये इन्होंने जी आज रिपोर्ट निकाली है और पाकिस्तान जो है जी नीचे से जो है दूसरे नंबर पे है। बहुत अच्छी बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब कल की जजमेंट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा जी कि 8068 एकर्स ऑफ लैंड जो कि पाकिस्तान मिलिट्री को दी गई थी नेशनल पार्क ऑफ इस्लामाबाद में, अपने 11 पेज जजमेंट में अतर मिनल्ला ने कहा है कि ये जो है पाकिस्तान मिलिट्री ने एनक्रोच किया है एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ 1979 एंड ऑर्डिनेंस ऑफ 1960 एंड द मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद। वो कहते हैं जी यहां पे ये जो मोनाल रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है इसकी भी जिस सीडीए के ऑफिशियल ने जो मंजूरी दी थी उन सबको हम कहते हैं कि ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और सीडीए को सारी जमीन वापस की जाए और ये जो मोनाल रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इसकी भी सारी जमीन जो है लेके और कब्जे में ली जाए क्योंकि ये मार्गला हिल्स को खराब कर रही हैं और अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस एंड अगेंस्ट लॉ जो है ये बनाई गई है। उन्होंने आज कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ये इतने बड़े बड़े जमीने जो हैं उनके ऊपर एनक्रोच करे। सम गुड न्यूज माजिद भाई। हाँ जी, स्टूडेंट्स ऑफ गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, आपको पता ही है कि एक्सट्रीमली हाई एंड ये इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद के अंदर, यहां की जो इंजीनियरिंग साइंसेज और टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं उन्होंने जी यूके के अंदर फॉर्म्यूला स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन जो कि यूरोप का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉन्टेस्ट होता है जो होता है उसके अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पोजिशन हासिल की है। हाँ जी, हाँ जी इन्होंने बनाई थी, इन्होंने अपनी टीम का नाम रखा था टीम इन्फिनिटी और इनका जो था कॉन्सेप्ट ग्लास लैब टाइम सिमुलेशन फॉर वर्चुअल सॉफ्टवेयर, इसने जो है टॉप पोजीशन हासिल की है। 34 कंट्रीज के लोग इधर थे और इनको सबको हरा के और पाकिस्तान की टीम को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। इसमें आशीर जुनेद जो थे इनके टीम लीडर थे और 24 मेंबर्स थे जिन्होंने कि ये सॉफ्टवेयर 2 महीने लगा के डेवलप किया था और इसके अलावा इसके अंदर 2 पाकिस्तानी जो स्टूडेंट थे पाक टर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस के, उन्होंने भी जो है यूएस के अंदर एक दूसरा जो साइंस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट हो रहा था उसके अंदर टॉप अवार्ड जीता है। तो पाकिस्तान को जनाब 2 अवार्ड्स बच्चों को मिले हैं, बहुत मुबारक,
बहुत मुबारक।
एंड जनाब सुशांत सिंह राजपूत के कटे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, नए कटे खुल गए हैं और आज तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने आज साफ कह दिया है कि इसकी गर्लफ्रेंड जो थी ये रिया चक्रवर्ती, एक और आदमी जो एक्यूज था सैमुअल मिरांडा और इसका अपना खुद का भाई शौविक चक्रवर्ती, ये सब सोर्स करते थे ये जो थी वीड और चरस और कोकेन और इनके इन्होंने बैठ के डील की थी और डील ये की थी कि हम ये जितने हाई सोसाइटी के लड़के और बॉलीवुड जाए फिल्म इंडस्ट्री उसके अंदर अलेजली ये सारी ट्रैफिक करेंगे ड्रग्स और इनको हम देंगे और लंबे पैसे कमाएंगे। लिहाजा इसकी डेथ में ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और इसका भाई जो है शौविक वो शामिल हैं। इनकी आपको पता ही है सुशांत सिंह राजपूत की बैंड्रा का जो इनका रेजिडेंस में था उसमें इनकी लाश मिली थी 14 जून 2020 को, तो उस दिन से जो है एनसीबी इसके पीछे लगी हुई थी इस केस के और आज जो है उन्होंने अपनी यानी कि कल शाम को उन्होंने अपनी जजमेंट दी है और उन्होंने कहा जी कि ये सब शामिल थे और ये इलीगल बिजनेस चला रहे थे क्योंकि इन्होंने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर कोई वैलिड लाइसेंस नहीं लिया हुआ था ये कारोबार करने के लिए। तो भाई ड्रग्स चलाने के लिए वैलिड लाइसेंस होता है हैं, पाया नहीं की गल हुई, ये समझ नहीं आई। अच्छा जी, तो जो 10 एक्यूज्ड हैं उनके अंदर ये 2 बहन भाई भी हैं और नहीं बहुत सारे एक्यूज थे, 30 के करीब थे, 10 तो नहीं थे, 30 एक्यूज थे मेरे ख्याल में। रिया चक्रवर्ती 10th नंबर की एक्यूज थी तो वैसे था। एंड जनाब द बॉम्बशेल न्यूज, मिस वर्ल्ड में सुष्मिता सेन ललित मोदी के साथ डेटिंग कर रहे हैं। ललित मोदी की क्या हिस्ट्री है वो हम आपको आज अभी सुनाते हैं और ये जो है उनका जो भाई है सुष्मिता सेन का राजीव सेन वो बड़ा हैरान हो गया है, वो कहता है जी मैं तो खुद बड़ा सरप्राइज्ड हूं। तो इसने जी अपनी ट्वीट डाली हुई है कि मैं लंदन वापस आ गया हूं, ललित मोदी ने कहा है कि ग्लोबल टूर लेके मालदीव सार्डिनिया से और शी इज माय बेटर हाफ, यानी कि सुष्मिता सेन को बेटर हाफ कहा है और कहा है कि वी आर जस्ट डेटिंग नॉट मैरिड जस्ट टू क्लैरिफाई बट इट विल हैपन वन डे। तो इसने न्यूज ने आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ा तहलका मचाया है। वो तहलका इसलिए मचाया है क्योंकि अभी हम आपको ललित मोदी की सारी हिस्ट्री सुनाते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि केविन स्पेसी जो है जिनके के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे 3 लोगों के, उन्होंने आज ओल्ड बेली में जब इनकी हियरिंग चल रही थी तो इन्होंने तमाम चार्जेस से बोला है मैं नॉट गिल्टी हूं। तो अब जज मार्क वॉल जो है उन्होंने June 6, 2023 जो है उसका ट्रायल किया, वो कहते हैं जी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे और इसके अंदर ये होगा। ये सारे इंसिडेंट्स जो सेक्सुअल अब्यूज के हुए थे लंदन में मार्च 2005 से अगस्त 2008 के बीच में हुए थे, और एक जो है वेस्ट यूके में हुआ था 2013 में। ये सारे विक्टिम्स अब 30s और 40s में हैं, लेकिन जो लॉयर हैं इनके, उन्होंने कहा जी मेरा क्लाइंट ये डिनाई करता है। हॉकी कनाडा जो है जी, उसने अनाउंस किया है कि हम सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि जितने भी अब प्लेयर्स हैं वो सामने आए और वो आके बात करें, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हम इनको एनकरेज करते हैं, अगर उन्होंने ना किया तो वो किसी भी हॉकी कनाडा की एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जबकि पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जो कोई भी आता है हम उसको एनकरेज करते हैं वो सामने आए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था। अब जो है ये मैंडेटरी जो है ये हो गया है, क्योंकि बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस जो थे आए थे अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ 2018 वर्ल्ड जूनियर टीम के,
और तो वो जो है उसमें से कई लड़के जो 8 लोग जिसपे इन्होंने चार्ज किया ना, उसमें से कई लड़के जो है वो दे आर ऑलरेडी प्लेइंग इन NHL नाउ।
यस दैट्स राइट। तो अब ऐसे अच्छा रॉयटर्स की जनाब ये खबर है, और रॉयटर्स की देखें किस्मत कैसे बदलती है भाई, जो अफ्रीका का फास्टेस्ट मैन है फर्डिनेंड ओमेयला, उसको अभी तक वीजा यूएस का नहीं मिल रहा था। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हो रही हैं और ये फास्टेस्ट आदमी है पूरे अफ्रीका का, इसको बरल जी जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चैंपियनशिप इसको मिल गया है। तो अब ये कह रहा है जी कि मैं 100 मीटर रेस के लिए अमरीका फौरन पहुंच रहा हूं और मैं अब इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो जनाब क्या बात है। जहीर अब्बास साहब जो हैं, जिनको के एजियन ब्रेडमैन भी कहा जाता था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कुछ दिनों से, लंदन में वो थे और 74 इयर्स उनकी एज है। उनको 2021 में यानी कि लास्ट ईयर कोविड हो गया था, फिर वो दुबई गए थे, दुबई से वो फिर लंदन जब आए तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको ICU में रखा गया था, लेकिन अब उनकी वाइफ ने कहा उनकी तबीयत ठीक है, और रमीज राजा ने भी उनकी हालत के बारे में पूछा है तो ही इज इंप्रूविंग विच इज वेरी गुड। एंड जनाब विराट कोहली माई फेवरेट स्टार है जी, क्रिकेट स्टार, 33 इयर्स टोटल एज है उनकी। तो जनाब इनको जो अब 5 मैच T20 सीरीज जो वेस्ट इंडीज में ये लोग खेलने जा रहे हैं और 18 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर विराट कोहली का नाम नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसको ड्रॉप कर दिया गया है कि या इसको T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसके लिए इसको रेस्ट किया गया है, क्योंकि इनकी काफी पोजीशन नीचे 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 जा रही है। 2019 के बाद इन्होंने कोई एक भी 100 रन्स नहीं बनाए हैं, और जो इनकी टीम है उसको लीड अप करेंगे ऑल फॉर्मेट कैप्टन जो है रोहित शर्मा, और वो कह रहे हैं जी कि अब ये मैचेस जो हैं ये खेले जाएंगे ट्रिनिडैड सेंट किट्स लॉडरहिल में और उसके बाद जाके फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। ठीक है जी, और अब हम आपको सुनाते हैं जी दिस ऑल कलरफुल पर्सन ललित मोदी की स्टोरी। ललित मोदी जो हैं आपको पता ही है, पहले तो हम आपको बता दें कि IPL का जो ब्रेन था के पीछे जो था वो ललित मोदी साहब थे, और इतने कोई इन्फ्लुएंशियल ये बंदे थे, एक जमाने में इनके बारे में कहा जाता था जी कि इसका लंच अमेरिका इंडिया में होता है, डिनर अमेरिका में करता है, अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट है वो साउथ अफ्रीका में करता है, ऐसी इसकी लाइफ थी, और अपना प्राइवेट इसका जेट था। तो बड़ी इनकी कलरफुल स्टोरी थी, इनको जो है कुछ माँ बाप ने पढ़ने के लिए अमेरिका में भेजा था, तो पहले ये गए जी पेस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में 2 साल के लिए, और फिर ड्यूक यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैरोलिना में, लेकिन वहां पे ये कुछ भी हासिल ना कर सके क्योंकि वहां पे दोनों यूनिवर्सिटियों से डिग्री ना ली, क्योंकि ये कुछ ड्रग्स के बिजनेस में अलेजली पड़ गए थे। वहां पे 0.5 किलोग्राम कोकेन जो थी $10,000 की, उसके ऊपर इनकी लड़ाइयां हो गई थी और इनको जो है पकड़ लिया गया था। बादल जी इन्होंने बाद में वहां पे उसको कहा एंड ही रियली गॉट लकी, इसने कहा जी कि मेरी तबीयत और हालत बहुत खराब हो गई है मुझे वापस जाने दें, तो इनको जो है इंडिया वापस जाने दिया था। इन्होंने जनाब अपना बिजनेस गॉडफ्रे फिलिप्स जो है इंडिया उसको सेटअप किया था, और 10-year जॉइंट वेंचर वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ किया था, और इन्होंने कहा था कि इसके अंदर सब कुछ शामिल होएगा, फैशन टीवी भी, और इनकी जो मेन पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी ESPN के लिए, जिसकी के वर्थ उस जमाने में $975 मिलियन थी। तो ये ही वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड एट दैट पॉइंट ये BCCI के पास गए और इन्होंने कहा कि हमको एक अपनी इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड जो है वो शुरू करनी चाहिए। BCCI ने ये इनका सारा आइडिया जो है रद्द कर दिया, उन्होंने कहा जी कि नहीं। तो ये 1999 में, क्योंकि इनको बड़ा क्रिकेट से प्यार था, इन्होंने जनाब जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उसमें ये इलेक्ट हो गए, और फिर इन्होंने BCCI को कहा कि क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है तो मुझे आपको हिस्सा दें, फिर इसको BCCI ने रद्द कर दिया। 2004 में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस चलाते हुए ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, और इससे पहले 2013 में इनके लिए गुड न्यूज आ चुकी थी और वो ये थी कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जो हैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गई थी, जो कि इनकी दोस्त थी और ये बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अपना हिस्सा बनाने के लिए, लेकिन वहां पर रोंगटा फैमिली जो थी वो इनको बार बार रद्द कर रही थी और इनको घुसने नहीं दे रही थी। जब वसुंधरा राजे आई तो जिसकी कि इन्होंने हेल्प की वहां पे उस वक्त अलेजली जीतने के लिए चीफ मिनिस्टर के, वो तो उन्होंने वहां पे जनाब अपना वो वोट डाला और ये जीत गए और ये जो है राजस्थान क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने आते सारी वहां पे राजस्थान में और दूसरे इलाकों में बहुत सारा काम शुरू कर दिया, नए बनाने शुरू कर दिए, इन्होंने जो है बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड्स एंड थिंग्स, और इनके बारे में कहा जाता था कि ये जो है किसी को भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अब क्रिकेट का फ्री टिकट ले, फ्री टिकट किसी को नहीं ये देना चाहते थे और वो कहते थे कि जी एडवर्टाइजिंग के जो स्पॉट्स हैं वो भी बढ़ाए जाएं। जिस वक्त इन्होंने व्हेन ही केम एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, आपको पता है कि एक एक स्पॉट जो था 1.5 मिलियन इंडियन रुपीस का 30 सेकंड स्पॉट जो था ये लोग बेचते थे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर जितना जो बाउंड्री लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी कॉरपोरेट्स अपने जो वो सेल कर रहे हैं और जो वो वहां पे जो है इनको मिलियंस में पैसे देने पड़ेंगे। और फिर क्रिकेट की गेम 200, 400, 500 की नहीं रही बल्कि जो कॉरपोरेट बॉक्सेस थे वो 125,000 इंडियन रुपीस पर पर्सन पे इन्होंने बेचने शुरू किए। तो ये यहां पे तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि इनकी जो दोस्तियां थी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से होना शुरू हो गई, जैसे कि एनसीपी के लीडर शरद पवार साहब जो थे जिन्होंने कि डिफीट किया था वो उनको जगमोहन दलमिया साहब को इन बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बाद में तो वो बन गए थे लेकिन उस वक्त इन्होंने किया था, तो वो जब आए तो ये फिर बन गए वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के एंड फ्रॉम देयर देयर वॉज नो लुकिंग बैक। 2005 से 2008 में इन्होंने बीसीसीआई के रेवेन्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम 1 बिलियन यूएस डॉलर के पक पहुंचाए। आप सोचे जरा टाइम 2008 में। और आईपीएल इसको नाम दिया गया और आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई और एट दैट टाइम उसकी वर्थ जो थी 4 बिलियन यूएस डॉलर जो थी उस पे पहुंच गई। 2010 में क्या हुआ कि इन्होंने जो रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड है उसकी बिड जीती केरला बेस्ड कोची टस्कर्स केरला फ्रेंचाइज में, और वहां पे जो किस्से और बॉम्ब्स फटे वो क्या थे, वो थे कांग्रेस के लीडर और उस वक्त जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर शशि थरूर साहब, उनके ऊपर बहुत सारे इन्होंने इल्जाम लगाए कि ये इस केरला, क्योंकि वो केरला से हैं, ये केरला की क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व है, ये गलत काम कर रहा है। इतना उनको तंग किया कि शशि थरूर साहब ने फिर जो है रिजाइन कर दिया उधर से, उन्होंने कहा जी मुझे लेना देना ही नहीं है कुछ क्रिकेट से। और उन्होंने लेकिन उस वक्त एक्सप्लेन किया कि केरला क्रिकेट की ये जो कोची टस्कर्स है इसके अंदर उनकी वाइफ जो सुनंदा पुष्कर, आपको याद है जिनकी के जिनको के बारे में बड़ा वो था कि जी उनको उनकी उनकी डेथ हो गई है बड़े जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में, तो वो कहते हैं जी कि उसके हिस्से थे। तो इन्होंने उनके ऊपर अलजी इल्जाम लगाए कि तुम ये जो डील्स बनाते हो ये बाहर से उसमें तुम किकबैक्स लेते हो, जबकि शशि थरूर साहब ने कहा कि ये जो मेरे पे कोई ये किकबैक्स मैं नहीं लेता, मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरी बीवी इसके अंदर इस्तेमाल है। बहरहाल इनके काम इतने गलत होते फिर चले गए, वो पावर के नशे में बंदा कभी 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 पावर नहीं संभाल सकता ना, कि बीसीसीआई जिसको कि इन्होंने दुनिया का जिस आईपीएल की वजह से जिन्होंने इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट जो है स्पोर्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उन्होंने फिर इनके ऊपर 22 चार्जेस लगाए फाइनली, जिसमें के किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो पैसे थे ये सारे इसके ये जो डील्स के होते थे वो, इवन बेटिंग वो करके फिर इनको निकाला वहां पे इनको चार्जेस के ऊपर, और ये जाके फिर लंदन में बस के लंदन में इन्होंने ये इनका ये ख्याल था कि जो ये एन श्रीनिवासन है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शायद उसने मास्टरमाइंड किया, क्योंकि उसके साथ इनकी काफी लड़ाई चलती थी। 2022 में इन्होंने अलेज किया कि श्रीनिवासन ने ये सारी ऑक्शन जो होती है ये जैसे कि प्लेयर्स लाइक एंड्रयू फ्लिंटॉफ उनके खिलाफ भी इसने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल निकाला गया बाद में तो श्रीनिवासन साहब को भी और इनको भी जी, बड़ा अनसेरेमोनियस जो तरीका था उसमें निकाला गया। इन्होंने हायर किया कॉटर रुक को वहां पे लंदन में टू फाइट अगेंस्ट बीसीआई चार्जेस, लेकिन वो फिर जा नहीं सके। सो ये थी जनाब ललित मोदी की हिस्ट्री, और अब वो डेट कर रहे हैं सुष्मिता सेन को.
Okay.
आप सोचें,
स्किल कर द मनी.
ओ यस, ह्यूज. इसने फिर वही किया ना, फिर इसने अपना यूरोप के अंदर अपना सारा बिजनेस फिर फैलाया, फिर वहां पे ये किया. और अब जो है इसने बड़ी, और इसके बीच में एक और भी इनकी लव स्टोरी भी आई थी, एक लड़की थी जो कि इनसे 7-8 साल बड़ी थी, डिवोर्सी थी, और ये बड़े माँ बाप ने खिलाफ उसके बोले कि नहीं तुम इससे शादी नहीं कर सकते. इसने कहा कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा. उसकी अपनी पहली एक बेटी थी, फिर इसने शादी की, उसमें से इसकी दो बेटी बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी. अब उसको छोड़ के अब सुष्मिता सेन के साथ ये अब जो है वो है.
पैसा है,
पैसा बहुत है जी,
बॉडी.
फिर मांगे मिलियन डॉलर. तो जनाब ये है वो,
ये थी हमारी
एक्सप्लोसिव स्टोरी आज की.
आखिरी सेकंड तक हम पहुंच गए. अब सिर्फ टाइम रहा है मेरे पास इतना कि मैं आपको बता दूं कि भूली बिसरी यादें, इस प्रोग्राम के फौरी बाद भूली बिसरी यादें आप सुनिएगा जनाब लियाकत मलिक साहब के लिए, और ट्रिब्यूट टू मिक्स आर्टिस्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. शादा जी थैंक यू
मच.
बाकी की बातें कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह.